हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम आठवां स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 28 एंड 29। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान्तिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तत्थाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासनां ब्रजवधू वर्गीनया कपिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम तुमर्थो महा श्रीचैतन्यमहाप्रभुं यतमिदं तत्थाकरः न परः। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वा मृतुमेतदेव गोविन्द दामो धरमाधवेति। करा ब्रजे वसन्तं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां सदुकूलचोरम्। श्रीराधिकाय हृदयस्य चोरम् चोराग्यगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीकृष्णश्यामं मनसा स्मरामि। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाबा पीतां भरधरुणा बिंब फल धरोष्ठा। पूर्णेन्द्र सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जानि। मूकं कुरुतु वाचालम् पङ्गुं लङ्घयति किरम् यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। ग्रंथ राज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आठवां स्कंध तीसरा अध्याय जिसका शीर्षक है गजेंद्र की समर्पण स्तुति। गजेंद्र अत्यंत सुंदर रीति से भगवान को समर्पण करते हुए श्लोक नंबर 28 में कहते हैं
नमो न तु यमसय वेगं शक्ति ध्याया खिल दीगुणाय प्रपन्न फालाय दुरंत शक्तये कदिंद्रियाणां अनवाप्य वर्त्मने। नमो नमस्तोऽप्यमसाय वेग शक्ति त्रयाय खिलधीगुणाय प्रपन्नपालाय दुरंतशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्य वर्त्मने। नमो नमस्तोऽप्यमसाय वेग शक्ति त्रयाय खिलधीगुणाय प्रपन्नपालाय दुरंतशक्तये कदिन्द्रियाणाम् अनवाप्य वर्त्मने।
शब्दार्थ नमो नमस्तुभ्यं असह्य वेगम्। जैसे कि पिछले श्लोक में गजेंद्र ने कहा था योगिनोयं प्रपश्यन्ति योगीशं तं नमोऽस्म्यहं कि जो भगवान जिनको योगीजन अपने हृदय में प्रत्यक्ष देखते हैं वो योगीश है, वही भक्ति का फल प्रदान करने वाले हैं, वही भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं। तो जब योग का फल भगवान प्रदान करते हैं और केवल भक्ति योग से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, भगवान को प्राप्त करना ही जीव मात्र का लक्ष्य है, तो फिर एक प्रश्न उठता है तो सारे लोग योग का ही आश्रय क्यों नहीं लेते। हाँ, जब योग से ही भगवत प्राप्ति संभव है तो सबको भक्ति योग करना चाहिए, सभी लोग को नाम जप करना चाहिए, सभी को भागवतम श्रवण करना चाहिए, सभी को भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए, भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए, संकीर्तन करना, क्यों नहीं करते। उसका उत्तर दे रहे हैं यहाँ पर गजेंद्र, कहते हैं शक्ति त्रयाया खिलधी गुणाय। हे प्रभु त्रियाया जो आपकी तीन शक्तियां, शक्ति त्रया यानी तीन शक्तियों वाले परम पुरुष भगवान, अखिल यानी ब्रह्मांड का दी बुद्धि के लिए गुणाया इंद्रिय विषयों के रूप में प्रकट होते होने वाले ये ए भगवान आपकी जो तीन रूप तीन शक्ति हैं, अर्थात रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण, इनके द्वारा जीव में इस संसार के लिए राग उत्पन्न हो जाता है, राग लोभ काम वासना, और सारे जीव इस संसार में आकर केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति चाहते हैं, चाहे वो किसी भी योनि में हो, जीव की एक ही इच्छा होती है कि मुझे आनंद प्राप्त करना है इसी योनि में,
इस माया की शक्ति का वेग असह्य है। जैसे गजेंद्र कहते हैं, नमो नमस्तुभ्य असह्य वेगम। असह्य मतलब बहुत बर्दाश्त नहीं होता है। जब ये माया रजोगुण के रूप में किसी जीव पर अटैक करती है तो उसको कंट्रोल कर पाना बहुत कठिन होता है। असह्य है, दुस्तर है, उसका वेग ऐसा लगता है जैसे समुद्र में जो बहुत ही गहरी वेगवान लहरें आती हैं, उसी प्रकार जीव के हृदय में काम वासना और दूसरे दूसरे लोभ राग ये सब उत्पन्न होते हैं और सारे जीव इस माया की शक्ति से प्रभावित हो जाते हैं। सारे जीव संसार को भोगने की इच्छा करते हैं और इसीलिए ये माया की शक्ति इतनी प्रबल है, इतनी असह्य है कि लोग भगवान की ओर आकर्षित होते ही नहीं है। सारे जीव परिवार में, देह में, धन में, इंद्रिय तृप्ति में सदैव लगे रहते हैं। मन में कोई संतोष नहीं होता है, जीव के मन में धैर्य नहीं होता है। उसको ये बात समझ में आती ही नहीं है कि अगर मैं भक्ति करूंगा तो मुझे भगवान प्राप्त हो जाएंगे और जब भगवान प्राप्त हो जाएंगे तो किसी भी भौतिक वस्तु का कोई हृदय के अंदर आकर्षण रह नहीं जाएगा, क्योंकि भौतिक वस्तुएं तो कष्टदायक हैं, कभी भी हमें संतुष्ट नहीं कर सकती हैं, कभी भी हमारे आनंद का कारण नहीं बन सकती हैं, सदैव हमें दुख देंगी। लेकिन ये बात उनको समझ में आती नहीं क्योंकि माया बहुत ही कठिन, बहुत ही दुरत्य है। भगवान कहते हैं कि मेरी माया को पार करना बहुत कठिन है। जीव संसार में आता है और माया के चक्कर में असह्य वेग के कारण इस संसार में आकर भौतिक वस्तु और व्यक्तियों के पीछे पागल हो जाता है और भगवान की भक्ति से बहुत दूर चला जाता है। ये माया का वेग असह्य है और इस असह्य वेग के कारण बस ऐसा लगता है कि नहीं, आई वॉन्ट दिस। ये भौतिक वस्तुओं की ओर ऐसा लगता है कि अगर ये मुझे नहीं मिली तो मैं जी नहीं सकूंगा। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि किसी भौतिक वस्तु के ना प्राप्त होने से आप मर जाओ, लेकिन ये माया है वो हमें भ्रमित करती है और हमें ऐसा लगता है कि यदि मेरी ये वासना पूरी ना हुई तो फिर जीना संभव नहीं होगा। लेकिन वास्तव में हम यह शरीर नहीं है, हम आत्मा है और आत्मा की तृप्ति इन भौतिक वस्तुओं के द्वारा हो ही नहीं सकती। भले ही माया की शक्ति बहुत ही असह्य है, परंतु यहाँ गजेंद्र कहते हैं, भगवान आप तो मायापति हैं, आपकी शक्ति का पार तो माया भी नहीं पा सकती। दुरंत शक्ति ये, आपकी शक्ति दुर्जयी है, आपकी शक्ति को कोई विजय नहीं पा सकता। आप एक माया तो का करोड़ों मायों का जाल यदि बिछा दिया जाए तो भी आपकी शक्ति तो असीम है, दुरंत शक्ति है। इसीलिए प्रपन्न पालाय दुरंत शक्ति है, हे शरणागतों को शरण देने वाले भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ क्योंकि आप बड़े दयालु हैं। आप शरणाग प्रपन्न पालाय, शरणागतों को शरण देने वाले हैं, आप बड़े ही कृपालु हैं। जो व्यक्ति आपकी शरण में आ जाता है उसका पालन करते हैं, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ, क्योंकि एकमात्र आपकी शरण में आने के बाद ही इस माया से बचा जा सकता है। माया को पार करना बहुत कठिन है, असह्य वेग है और केवल आपकी शरण में आकर ही माया से बचा जा सकता है। लेकिन यहाँ गजेंद्र एक बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि यदि आपको भगवान की शरण में जाना है तो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल प्राप्त करना पड़ेगा, इंद्रियों के वेग को रोकना पड़ेगा, इंद्रियों की मांगों को पूरा नहीं, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं जीना पड़ेगा बल्कि कृष्ण प्रसन्नता के लिए जीना होगा। क्योंकि गदेन्द्रियाणाम अनवाप्य वर्तमन, अनवाप्य मतलब बहुत दुर्लभ है वर्तमन, जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता, यानी फिर भी क्योंकि इंद्रियां तो दूषित हैं, क्योंकि इंद्रियों को तो भोग भोगने की ही वासना लगी होती है, तो इंद्रियों को भोग इंद्रियां जो कि भोग भोगने में लगी हुई होती हैं, उनके लिए भगवान की भक्ति का मार्ग पाना बहुत बहुत कठिन है। कदिन्द्रियाणाम अनवाप्य वर्तमने, लेकिन फिर भी भगवान बड़े कृपालु हैं, क्योंकि भगवान की शरण में जाकर हमारी वासना समाप्त हो जाती है। जब हम भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं, तो धीरे 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 हृदय के अंदर जो वासना पड़ी हुई है ना इंद्रिय भोग की, वो समाप्त होनी है, निश्चित रूप से होनी है। अब हम ये सोचें कि भाई हम इतने समय से भगवान का नाम जप कर रहे हैं लेकिन फिर भी वासना बनी हुई, तो इसका मतलब है शायद हम जप सही तरीके से नहीं कर रहे हैं या भगवान की कथाओं को सही रूप से नहीं श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि भक्ति के साथ जब हम भक्ति करते हैं, और भक्ति का एकमात्र भक्ति का मतलब है इस कलयुग में क्या, श्रवण और कीर्तनम, और जो जहां पर भक्ति होती है वहां पर उसके साथ साथ उसके दो बच्चे जरूर होते हैं, वो क्या है, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति करने से जीव के हृदय में ज्ञान उत्पन्न होता है, भगवान स्वयं हृदय के अंदर ज्ञान प्रकाशित करते हैं, और ज्ञान के साथ साथ उसके हृदय में वैराग्य उत्पन्न होता है भौतिक वस्तु और व्यक्तियों के प्रति। यदि ये नहीं हो रहा है तो समझो भक्ति सही नहीं हो रही है, समझो श्रवण सही नहीं हो रहा है, समझो भगवान का नाम उच्चारण सही नहीं हो रहा है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, बहुत ही गंभीरता के साथ भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए, भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहिए, नाम अपराध से बचना चाहिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा तीव्र गति से भगवान की ओर बढ़ सके और जल्द ही भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सके। ये जन्म बहुत अनमोल है, यदि ये बीत गया तो ना जाने हमें अवसर भी प्राप्त होगा या नहीं। तो यहाँ पर गजेंद्र बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि क्योंकि कुंठित इंद्रियों के द्वारा, दूषित इंद्रियों के द्वारा भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन है, और भगवान की माया भी बहुत प्रबल है जो कि बहुत ही वेगवान है, आकर्षण करती है अपनी ओर, और जीव विवश हो जाता है भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए, लेकिन भगवान बहुत दयालु हैं और इनकी शरण में यदि हम जाएंगे तो अवश्य वो हमें इस माया से बचाएंगे। इसलिए मैं ऐसे भगवान को प्रणाम करता हूँ। अनुवाद देखिए, हे प्रभु, आप तीन प्रकार की शक्तियों के दुस्तर वेग के नायक हैं, आप समस्त इंद्रिय सुख के आधार हैं और शरणागत जीव के रक्षक हैं, आप असीम शक्ति के स्वामी हैं। किंतु जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में रखने में अक्षम हैं, वे आप तक नहीं पहुंच पाते। मैं आपको बारंबार प्रणाम सादर नमस्कार करता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, आसक्त लोभ तथा काम, आसक्ति लोभ तथा काम ये तीन दुस्तर वेग हैं, किसी के अंदर आकर्षण उत्पन्न हो जाए, किसी को प्राप्त करने का लोभ हो जाए और हृदय के अंदर काम इच्छा उत्पन्न हो जाए, ये तीन वेग बहुत ही दुस्तर हैं, जो भगवान के चरण कमलों पर मन को एकाग्र करने में बाधक होते हैं। ये वेग इसलिए कार्यशील रहते हैं क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि अभक्तों तथा नास्तिकों को उनका साक्षात्कार हो, किंतु भगवान के शरण कमलों की शरण लेने पर ये अवरोध हट जाते हैं और भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। अतएव भगवान शरणागतों के रक्षक हैं। भगवान के शरण कमलों की शरण में गए बिना कोई भी व्यक्ति भक्त नहीं बन सकता, तब भगवान उसे भीतर से बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह भगवत धाम वापस जा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की श्री प्रभुपाद जी कितना सुंदर बता रहे हैं कि वैसे तो इस भौतिक जगत में किसी के हृदय में वासना उत्पन्न हो जाती है, लोभ उत्पन्न हो जाता है, आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, तो बहुत दुस्तर वेग होता है उसका। जैसे कि गजेंद्र कहते हैं असह्य वेगम, ये जो रजोगुण तमोगुण की विरक्ति है उसके अंदर बहुत पावर है, वो बलात् खींच लेती है जीव मात्र की बुद्धि को और उस कार्य में लगा देती है। लेकिन भगवान उस समस्त शक्तियों के नायक हैं। ये समझ जो माया शक्ति है त्रिगुणमयी, भगवान कहते हैं दैवी ये शागुणमयी मम माया, ये मेरी शक्ति है और मैं शक्तिमान हूँ, इस माया का कंट्रोलर हूँ। तुम्हें यदि इस माया को पार करना है तो उसका एक ही तरीका है, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति, तुम मेरी शरण में आ जाओ, फिर देखो मैं कैसे माया का सफाया करता हूँ और तुम्हारे हृदय में ये भौतिक आसक्ति भौतिक गंदगी समाप्त तो हो जाएगी। भगवान के चरण कमलों की शरण में गए बिना भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। और जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, सततम कीर्तयन्तो माम, सतत कीर्तन करना है। और इस तरह जब हम कंटिन्यूस भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे, भगवान की कथाओं में लगे रहेंगे, भगवान की सेवा में लगेंगे, तो भगवान नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भाव, भगवान इतनी कृपा करेंगे और हृदय के अंदर ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, भौतिक वस्तु और व्यक्तियों का आकर्षण समाप्त हो जाएगा, फिर माया हमें अपने जकड़े में नहीं ले सकेगी। आगे गजेंद्र अपनी प्रार्थना का अंतिम श्लोक कहते हैं, नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धियाहतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तं मितोऽस्म्यहम्। नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धियाहतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्त मितोऽस्म्यहम्। नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धियाहतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्त मितोऽस्म्यहम्। नायं वेद स्वमात्मानं, नायं मतलब नहीं, अयम सामान्य लोग, ये जो आपकी माया शक्ति है, जो साधारण लोग होते हैं वो इसको नहीं, वेद नहीं जान सकते, इसको नहीं जान सकते, क्योंकि आपकी माया शक्ति से जीव की देह में अहम बुद्धि हो गई है ना, वो अपने आप को आत्मा मानता ही नहीं है, अपने आप को देह मानता है और जीव सांसारिक पदार्थों को भोगने में लगा रहता है, इसलिए हतम, हतम का मतलब होता है कि जीव जो है वो इस माया शक्ति के द्वारा पराजित हो गया है ना। यत शक्तया अहम धिया, यत शक्तया मतलब जिसके प्रभाव से, इस माया की शक्ति से मैं अहम धिया, मतलब वो अपने आप को ये सोचता है, उसकी बुद्धि में यही सोचता है कि मैं तो ये देह हूँ, तो उसी हिसाब से वो इस माया शक्ति से पराजित हो जाता है और केवल इस सांसारिक पदार्थों को भोगने की इच्छा करता है, तुम्हारी शरण में आने की इच्छा नहीं करता। क्योंकि नायम वेद स्वमात्मानम, वो अपनी आत्मा को नहीं समझता, वो अपने आप को नहीं समझता और वो आपको भी नहीं जानता है, इसलिए वो केवल भौतिक वस्तु और पदार्थों के द्वारा आनंदित होना चाहता है। तम दुरत्ययमाहात्म्यम, हे कृष्ण, हे भगवान, आपकी दुरंत महिमा है, आपकी असीम शक्ति है, कोई भला उसको कैसे समझ सकता है। तम दुरत्ययमाहात्म्यम भगवंत मितोस्म्यहम्। हे भगवान, आप अकेले होकर इस पूरे विश्व को मोह की रस्सी से बांध देते हो। सब जीव संसार को भोगने की इच्छा करते हैं, अपने आप को ये देह समझते हैं। आपकी माया शक्ति उन्हें सब कुछ भुला देती। अद्भुत शक्ति है माया की। हर एक वस्तु, हर एक जीव को इंद्रिय प्रदान करके, इंद्रिय विषय प्रदान करके, और क्योंकि वो आप तक आना नहीं चाहते, इसलिए उन्हें अज्ञानता प्रदान करके आप उन सबको भ्रमा रहे हो। लेकिन आपकी शरण में जो आ जाता है, उसका माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए ऐसे असीम शक्ति वाले भगवान को भगवंतम इतः अस्म्यहम्, ऐसे अजीम शक्ति, ऐसी असीम शक्ति वाले भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। और मुझे यकीन है, जब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, तो अब माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अनुवाद देखिए, मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिनकी माया से ईश्वर का अंश जीव देहात्म बुद्धि के कारण अपनी असली पहचान को भूल जाता है। मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ जिनकी महिमा को समझ पाना बहुत कठिन है। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की इच्छा। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि प्रत्येक जीव, चाहे वो मनुष्य हो, देवता हो, पशु हो, पक्षी हो, मक्खी हो, या कुछ भी और हो, भगवान का अंश है। भगवान कहते हैं कि ममैव अंश जीव लोके जीवभूत सनातन। भगवान तथा जीव पिता तथा पुत्र के समान घनिष्ठता पूर्वक जुड़े हुए हैं। दुर्भाग्यवश भौतिक संपत्ति के कारण जीव इसे भूल जाता है और अपनी ही योजना के अनुसार स्वतंत्र रूप से भौतिक जगत का भोग करना चाहता है। वास्तव में जीव भगवान का अंश है, परंतु भगवान की माया इतनी प्रबल है कि वो उसे भुला देती है और उसे कहती है, तुम भोक्ता बनो। क्यों कृष्ण खाली भोक्ता बने? फिर वो कहेगा, हाँ मुझे भी तो भोग करना है, मुझे भी आनंद लेना है। और इसलिए वो स्वयं को आनंदित करने की योजना बनाता है, स्वतंत्र रूप से भौतिक जगत का भोग भोगना चाहता है। इस माया को पार कर पाना अत्यंत कठिन है। माया जीव को आच्छादित कर लेती है, क्योंकि जीव भगवान को भूलना चाहता है और इस जगत का भोग करने के लिए अपनी योजना बनाना चाहता है। जब तक यह कुलुष यानी कलमच बना रहता है, तब तक बद्ध जीव अपनी वास्तविक पहचान को समझने में असमर्थ बना रहेगा, जन्म जन्मांतर में भ्रम पड़ा रहेगा। श्रीमद् भागवतम 5.5.8 कहते हैं, अतो गृह क्षेत्र सुप्ताप्त वित्तय जनस्य मोहोयम अहम ममैति। जब तक जीव इतना प्रबुद्ध नहीं हो लेता है कि वह अपनी वास्तविक स्थिति को समझ सके, तब तक वह भौतिकतावादी जीवन के प्रति तथा घर, देश अथवा क्षेत्र, समाज, पुत्र, परिवार, जाति, बैंक, बचत आदि के प्रति आकर्षित होता रहेगा। इन सब से आच्छादित होने से वह सोचता रहेगा, मैं यह शरीर हूँ और इससे संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है। इस भौतिकतावादी देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो भगवान की शरण हो जाता है, जैसा कि गजेंद्र ने किया, वह ब्रह्म पद को प्राप्त करके प्रबुद्ध हो जाता है। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मत् भक्तिम् लभते पराम। जो आध्यात्म पद पर स्थित है, उसे तुरंत ही परम ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, जब वो आध्यात्मिक स्तर पर आ जाता है, फिर तो उसके लिए कोई भौतिक माया का चक्कर रह नहीं जाता। वो साक्षात्कार पर ब्रह्म का साक्षात्कार प्राप्त करता है और वो पूर्ण प्रसन्न आत्मा हो जाता है। प्रसन्न आत्मा, उसे कोई दुख नहीं रहता, वह न तो पछताता है न किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करता है, वह समस्त जीवों के प्रति समान भाव रखता है। इस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता 18:54। चूंकि भक्त पूर्ण रूपेण ब्रह्म पद पर रहता है, अतएव वह किसी अन्य जीव से ईर्ष्या नहीं करता। समः सर्वेषु भूतेषु श्रील प्रभुपाद की जय हो। तो यहाँ पर गजेंद्र ने अपनी स्तुति को समाप्त किया ये कहकर कि क्योंकि आपकी माया बहुत 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 प्रबल है, उसको पार कर पाना बहुत कठिन है, बड़े बड़े ज्ञानी भी इस माया को पार नहीं कर पाते, तो मुझ जैसे पशु की भला क्या बात की जाए। परंतु इस माया को पार करने का एक तरीका है कि जो आपकी शरण में आ जाता है, जो आपको प्रणाम करता है, आपको आपकी शरणागत आ जाता है, फिर माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसीलिए हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मुझे संरक्षण प्रदान कीजिए, मुझे बचाइए और इस महामाया से पार करके अपनी शरण में, अपने चरणों की शरण प्रदान कीजिए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है, मुझे बचा लीजिए। तो गजेंद्र की यह हृदय से निकली हुई प्रार्थना को भगवान श्रवण कर रहे हैं। हम जब भी भगवान की कोई स्तुति करते हैं तो भगवान अवश्य सुन रहे होते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पता नहीं भगवान सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। भगवान जरूर सुनते हैं, भगवान को बहुत अच्छा लगता है अपनी स्तुति सुनना। तो जैसे ही गजेंद्र स्तुति समाप्त करते हैं, उसके बाद शुभदेव गोस्वामी बताते हैं कि वैकुंठ में जो भगवान बैठे हुए हैं वो तुरंत ही आते हैं, तुरंत गरुड़ पर सवार होते हैं और गजेंद्र की सुरक्षा करने के लिए नीचे आते हैं। लेकिन आ रहे होते तो रास्ते में उनको ऐसा लगता है कि उनका गरुड़ बहुत ही स्लो चल रहा है। गरुड़ की गति मन के वेग से चलती है, मन कैसा वेगवान होता है। अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, फौरन से हम वृंदावन पहुंच जाते हैं, फौरन से मायापुर पहुंच जाते हैं, उसी क्षण अमेरिका, कोई भी जगह के संसार जहां पर भी जाना चाहे वहां पर हमारा मन लेके जाता है। उसी प्रकार भगवान के मन की गति से गरुड़ वेग से चलता है। लेकिन आज भगवान को ऐसा लग रहा है कि मेरे भक्त के ऊपर कष्ट है, ये गरुड़ की गति तो बहुत मंद है। तो भगवान गरुड़ को बताए बगैर अकस्मात गरुड़ से उतर जाते, गरुड़ परेशान हो जाते हैं कि भगवान उतरे क्यों है, और गरुड़ को बोलते तुम बहुत स्लो चल रहे हो, मुझे आगे जाना। इतना स्लो चलना होता देखते नहीं हो वो कितना संकट में है। फिर भगवान आगे जाते हैं और किस तरह से ग्राह को कावत करके गजेंद्र को ग्राह के पास से छुड़ाते हैं और अपना पार्षद बनाते हैं, वो हम सुनेंगे। कृपया साथ रहिएगा, एक बार गजेंद्र स्तुति शुरू से पढ़ेंगे। श्री बादरायणी रुवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राक्षन्मन्यनुशीक्षितम्। श्री गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशायाभि धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदम् येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वच तत् तिरोहितम् अविद्या
तदिक साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमिति कालेन पञ्चत्वमिति शुकृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरम् यस्तस्य भारी विभिरा विविराजते विभु न यस्य देवा ऋषय पदं विदु जन्तु पुनः कोऽर्हतिगन्तुमीरितुं यथा नटस्य कृतिभिर्विचेष्टतो दुरध्ययानु क्रमण समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलम् विमुक्तसङ्गा मुनय सुसाधव चरन्त्यलोकव्रतमावृणं वने भूतात्मभूता सुहृद समीगति न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय क्षमायया तान् यनुकालमिच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मा प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानखनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृश्ये सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणायात् भूतकारणाय सर्वागमाम्नाम् यमहार्णवाय नमोपवर्गाय पारायणाय गुणारणिच्छन् नचिदोष्मपाय तत्क्षोभविस्फोर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम् स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांशेन सर्वतनुभिर् मनसि प्रतीत प्रत्यत्रिशो भगवति बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्त गृहवित्त जनेषु सक्तये दुष्प्रापणाय गुणसंग विवचिताय मुक्तात्मभि सुहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं चाशिशोराद्यपि देहमव्ययम् करोतु मेदत् हृदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थम् वाचन्ति ये वै भगवत्प्रपन्ना अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलम् गायन्ति आनन्दसामोत्रमग्ना तमाक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाध्यम् परिपूर्णमीति यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाचराचरा नामरूप विभेदेन वर्ग्या च कलया कृता यथार्चि शोभने सवितुर्कभस्तयो निर्यान्ति संयात्य सकृत् स्वरोचिष तथा यतोऽयं गुणसंप्रवाहो बुद्धिर्मनकानि शरीरसर्गा स वै न देवा सुरमर्त्यत्रेयं न स्त्री न शण्डो न पुमान् न जान्तु नायं गुणः कर्म नासन् न चासन् निषेदशेषो जयतादशेष जी जी विशेनाहमिहा मुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन नयस्य विप्लव तस्यात्मलोका वरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योग विभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेकं शक्ति त्रयाय खिलदीगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणाम् अनवाप्यवर्त्मने नायं वेदसमात्मानं यच्छक्त्याहं धियाहतं तं दुरध्ययमाहात्म्यं भगवन्तं मितोऽस्म्यहम्। श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषम् ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमाना नैति यदोपसृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तत्पदार्थमुपलभ्य च कन्निवास स्तोत्रं निशम्य दिवि च सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समूह्यमानश् चक्रयुधोभ्यकमधाशु यतो गजेन्द्र सोऽन्तःसुरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्तचक्रम् उत्क्षिप्य साम्भुजकरं गिरमाह क्रीष्ण नारायणखिल गुरे भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमज सह सावित्वतीर्य सग्राहमाशु सुरस कृपयोच्चहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरण गजेन्द्रम् सम्पश्यताम् हरिरमु मुच दुश्चिराणाम् गजेन्द्रस्त्रम् अस्तोत्रमहात्मकी हरे कृष्ण आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी साधना और सेवा को अच्छे से कर सकूं।